नमस्कार, स्पोर्ट्स ज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स ज्ञान के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स ज्ञान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ।
सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य रंगारंग समारोह के साथ समापन। ओलंपिक खेलों की मशाल लॉस एंजलिस को सौंपी गई, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने हैं। आईसीसी ने जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटरसन को पुरुष और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को महिला श्रेणी में चुना गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का रंगारंग समारोह के साथ कल समापन हो गया। इसमें भारत ने एक रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। समापन समारोह में ओलंपिक खेलों की मशाल लॉस एंजलिस को सौंप दी गई, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने हैं। समापन समारोह में पिया शीरेश और मनु भाकर भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। क्या कुछ रहा कल पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह का हाल बता रहे हैं पेरिस से आकाशवाणी संवाददाता बहिन सिंह लालस।
33वें ओलंपिक खेलों का कल पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया, और इन खेलों की मशाल अब लॉस एंजलिस को सौंप दी गई, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पी आर श्रीजेश और मनु भाकर। समारोह में पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी इटांगुए ने तहे दिल से सभी एथलीटों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया। साथ ही 45,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स, आयोजकों और पेरिस वासियों का भी शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इन खेलों को सफल बताया और ओलंपिक ध्वज लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास को सौंप दिया। समापन समारोह में मशहूर अमरीकी अभिनेता टॉम क्रूज स्टेडियम से मोटरसाइकिल पर ओलंपिक ध्वज लेकर निकले। पेरिस ओलंपिक खेलों में 17 से ज्यादा नए विश्व कीर्तिमान बने। 1 रजत और 5 कांस्य यानी कुल 6 पदकों के साथ भारत रहा पदक तालिका में 71वें स्थान पर। इन खेलों के सबसे सफल एथलीट रहे मेजबान फ्रांस के तैराक लियो मचा, जिन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में अमेरिका की तैराक टोरी हस्के का प्रदर्शन सबसे शेष रहा। टोरी ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
जी हां, सीन नदी पर लगभग 4 घंटे तक चले उद्घाटन समारोह में जहां इस शहर की वास्तुशिल्प और देश की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया गया था, वहीं समापन समारोह भी उसी तरीके से मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। और राकेश, आप पूरी तरह से पूरे ओलंपिक्स पर नजर बनाए हुए थे 26 जुलाई से, और अब जबकि जिस तरह से ग्रैंड कहते हैं कि अगर आगाज अच्छा हो तो अंदाज भी अच्छा होता है, तो आगाज तो बेहतरीन था और उसी तरह से इसका समापन भी हुआ।
सिद्धार्थ, इनका आगाज अच्छा था, अंदाज अच्छा था और अंजाम भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। पेरिस और फ्रांस के लिए भी ये गेम्स काफी अच्छे रहे। आपने जैसे बात किया कि ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि देखिए इतने गेम्स हुए हैं अभी तक, ऐसा ओपनिंग सेरेमनी शायद हमने नहीं देखा था, जो बिल्कुल रिवर साइड में, जो कि स्टेडियम से बाहर निकल के हुआ पहली बार। मगर क्लोजिंग सेरेमनी उन्होंने वही किया जो कि एक ट्रेडिशन है, जबकि आप एक स्टेडियम के अंदर 75,000 का क्राउड, और वहां पे आपने क्या क्या नहीं किया। और जैसे कि अभी जैसे हमने सुना भी कि टॉम क्रूज कैसे वो ओलंपिक फ्लैग लेकर स्टेडियम से के जो छत है उसको उसके थ्रू निकले, और वो अब निकल गया लॉस एंजलिस की तरफ, क्योंकि वो स्टंट आर्टिस्ट हैं, कमाल के आर्टिस्ट हैं, और उनका वो स्टंट वाला जो उनका जो एक स्ट्रांग पॉइंट है उसको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बखूबी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और ऑफकोर्स एक्रोबैट्स और जितने भी थे उनके, मतलब पूरा जो मिक्स था, कल्चरल मिक्स था, मॉडर्निटी थी, बहुत खूबसूरत है।
और आपने जैसे कि टॉम क्रूज की बात करी तो अपने आप लोग रोमांचित हो जाते हैं उन्हें देखकर, और जो मिशन इम्पॉसिबल के थीम सॉन्ग के साथ वो मैदान पर उतरे, उन्होंने स्टार जिम्नास्ट सिमेन बाइक से ओलंपिक ध्वज लिया, उसे बाइक पर पेरिस की सड़कों से होते हुए लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार विमान की ओर ले गए। जी हाँ, और ये एक बाइक पे जिस तरीके से थॉमस क्रूज वहां पर निकले पेरिस की सड़कों पर, उनके फैंस तो दुनिया भर में हैं, लेकिन इसने उनके इस अंदाज ने इसको और ज्यादा खूबसूरत बना दिया।
एक चीज होती है कि एक इंसान की एक छवि है
जी,
और वो भी टॉम क्रूज, बॉलीवुड के हॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से उनकी गिनती होती है, काफी सालों से है, और उनके जो स्टंट्स होते हैं वो देखने, उनका स्टंट बिकता है
जी,
उनकी एक्टिंग तो खैर दिखती है लेकिन उनके स्टंट जरूर बिकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक से एक स्टंट किए जो खुद किए हैं स्टंटमैन के अलावा। तो उसके बाद जब हम ये देखना चाहते हैं रियल लाइफ में आपको दिखाया जाता है, हालांकि ये न्यूज छट के थोड़ी बहुत बाहर आ गई थी, नॉर्मली ये सब बड़ा सीक्रेट होता है
जी,
कि आपको पता नहीं लगना चाहिए कि वो ओपनिंग सेरेमनी का कॉन्टेंट क्या है,
बहुत कवर करने का किया जाता है, हम लोगों की बात हो रही थी लगातार, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत ही सस्पेंस रखा गया उन्हें,
हमेशा रखा जाता है। मैंने भी ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह मैंने भी देखे, कभी भी आपको, आप वेन्यू पे खड़े होंगे, स्टेडियम के बाहर अंदर रिहर्सल चल रही है
जी,
लेकिन आपको ये बताया जाता है कि अगर आप रिहर्सल भी देख रहे हैं तो बाहर जाके आप किसी से न कहें
जी,
और लोग कहते भी नहीं।
और इससे पहले थॉमस जॉली द्वारा तैयार किए गए 2 घंटे के कार्यक्रम की शुरुआत एक संगीतमय गीत के साथ हुई, जिसमें फ्रांसीसी गायक जाहो डी सगाजन ने मशहूर सूस ले सियल दे पेरिस गीत गाया।
Des amoureux, leur bonheur se construit sur un effet pour eux, sous le pont de.
और इसके बाद 205 देशों के ध्वजवाहकों ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया। खिलाड़ी ध्वज लहरा रहे थे और एक दूसरे से मिल रहे थे। कुछ खिलाड़ी यादगार समारोह की तस्वीर लेने में व्यस्त थे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी और यहां समापन समारोह के दौरान अतीत की यादों को जीवंत करने की कोशिश की गई थी। और अगर हम देखें तो बाद में उसी अध्यक्ष बाक ने जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी आईओसी हिंडाल्गो को ने ओलंपिक ध्वज सौंपा, इसके बाद बात हुई लॉस एंजलिस की, और 5 बार की ग्रैमी पुरस्कार विजेता ग्रेबिला सबिएंटो विल्सन ने अमरीकी राष्ट्रगान गाया, और पूरा माहौल जो है वो एक तरह से कहते हैं कि जब आगाज हुआ और इसके बाद जब समापन हो रहा था तो पेरिस ओलंपिक खेलों में कुछ नए रिकॉर्ड्स बने, कुछ ने पदक जीता, तो कुछ पदक के एकदम करीब पहुंचकर रुक गए। तो ऐसे में पेरिस ओलंपिक की तमाम यादों को अपने दामन में समेटे खिलाड़ियों ने लॉस एंजलिस में दोबारा मिलने के वायदे के साथ पेरिस को अलविदा कहा। जी हाँ, और अब बात आती है भारत की परफॉर्मेंस की। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य समेत 6 पदक हासिल किए हैं। भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 41 पदक जीते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें, इनमें से 10 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। भारत को ओलंपिक खेलों में ये 41 पदक कुल 8 खेलों में हासिल हुए हैं, जिनमें हॉकी, कुश्ती, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, टेनिस शामिल हैं। अब सबसे पहले तो राकेश, आपने बहुत सारे ओलंपिक्स कवर किए हैं, एक लंबा आपका आपकी पृष्ठभूमि रही है ओलंपिक खेलों को लेकर, क्या कैसे आप एनालिसिस करते हैं इस बार हमारी परफॉर्मेंस की?
हमारी परफॉर्मेंस इस बार अच्छी नहीं रही
जी।
अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो यह है कि इसको हम एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें हमारा जो गोल्ड मेडल जैसे आया इंडिविजुअल में 2008 में, इससे पहले हमारे पास गोल्ड मेडल था ही नहीं। अभी आपने 41
जी
जो कहे
जी,
उसमें 8 तो हैं हॉकी से, एक अभिनव का जो 2008 में आया और एक आया नीरज से
जी।
परफॉर्मेंस उम्मीद भी हमको कोई देखे, रियलिस्टिक उम्मीद ये नहीं थी कि हमारे जो पिछली बार 7 आए थे टोक्यो से उसके आसपास होगा, या बहुत अच्छा रहा तो 7 से बढ़ के 3 और ज्यादा हो जाएंगे, 10 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन परफॉर्मेंसेस जो है ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग रही। अगर मैं कहूं कि 6 मेडल और 6 लोग ऐसे थे, 6 मेडल लेने के मतलब जो लोग मेडल जीत के आए उनके अलावा, जो कि चौथे स्थान पे जिन्होंने अपना जो कैंपेन था वो खत्म किया
जी।
4 देखिए, जहां पे भी मेडल मिलता हो वहां आप 14वें नंबर पे आ जाएं, 40वें नंबर पे आ जाएं, आपको उतना दुख नहीं होता जितना चौथे नंबर पे आप फिनिश करते हैं
जी।
और हमारे राष्ट्र में क्योंकि चैंपियंस नहीं है, हम लोगों ने चौथे, जो भी चौथे आए हैं उनको बड़ा सेलिब्रेट किया है
जी पर क्या बात है, चौथे आ गए हम, चाहे वो मिल्खा सिंह हो, चाहे पीटी उषा हो, दीपा करमारकर हो, 2012 में अभिनव खुद हो क्योंकि वो उससे पहले के गोल्ड मेडलिस्ट थे
जी।
और देखिए बड़ी एक अजीब सी बात है कि इस बार हमारे पास 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर आया। जो सिल्वर आया कम से कम उसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन 6 में से अगर सबसे कम किसी मेडल को हमने सेलिब्रेट किया है तो वो नीरज का मेडल है, क्योंकि लोगों को सिवाय गोल्ड के नीचे कुछ दिखी नहीं रहा था
ही नहीं।
और वो इवेंट भी कुछ ऐसा हुआ कि नदीम ने जैसे ही वो थ्रो 92.7 किया,
गैप था जी।
गैप भी इतना था और नीरज ने कभी 90 क्रॉस नहीं किया, और उससे आप सोच रहे हैं कि अभी एकदम से वो 93 का थ्रो लग जाएगा, लग भी सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जैवलिन एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि अगर आपकी ट्रैजेक्टरी और जो डिग्री और जो पॉइंट ऑफ रिलीज है वो टेक्निकली अगर करेक्ट लग गया आपका उस दिन, तो आप 3 मीटर भी क्रॉस कर सकते हैं अपने डिफरेंस में
जी।
लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से मतलब इस पे मैं मतलब बोलते हैं, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस
जी। और आपने कहा कि चौथे स्थान पर कुछ ऐसे, तो करीब हमने 6 पदक इसमें गंवाए हैं। मनु 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर पदक की हैट्रिक नहीं लगा पाई, वो एक थोड़ा सी कसक रह गई। अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल्स में अंतिम समय में निशाना उन्होंने थोड़ा सा गलत लगाया और पदक गंवा बैठे। महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह की बात करेंगे जो स्कीट मिक्स टीम में कांस्य के मुकाबले में चीन से 1 अंक से हार गई। शटर लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में पहला गेम जीतने के बावजूद मलेशिया के ली जीजिया से हार झेलनी पड़ी। और इसके अलावा मीराबाई चानू की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 किलोग्राम से वो तीसरे स्थान पर रह गई। और तीरंदाजी की जो मिक्स टीम स्पर्धा में अंकिता भगत, धीरज बोमा देवरा जो है वो कांस्य के मुकाबले में अमरीका से हार गए। तो काफी क्लोज फाइट थी, यहां पर कुछ बेहतर हो सकता था।
बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि देखिए किसी न किसी को 4th आना है
जी,
और अगर हम आ जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हमको और दुखता है। लेकिन हाँ, जैसे आपने जिक्र किया, मनु बाकर के चांस सबसे अच्छा लग रहा था मुझे
जी।
अर्जुन का भी बिल्कुल लास्ट के 2 शॉट्स में वो रह गए, क्योंकि जब हम शूटिंग की बात करते हैं, देखिए शूटिंग एक प्रिसिशन स्पोर्ट है, इसमें जो एक विनर और एक जो विनर नहीं है इसमें फ्रैक्शंस के पॉइंट्स का फर्क पड़ता है, एक पूरा पॉइंट भी नहीं होता है। हम यहां बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की, डेसिमल्स की, तो वहां पे जो डिफरेंस है वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी रही मनु की, तो खैर परफॉर्मेंस अच्छी थी ही थी, क्योंकि वो जिस अंदाज में शूट कर रही थी, क्वालिफिकेशन में 2nd थी और उनका 3रा मेडल दिख रहा था कि शायद आ जाए, सिवाय उनके लास्ट के 2 शॉट्स थे, क्योंकि टाई शूट में गया वो, दोनों के इक्वल पॉइंट्स थे, वेरोनिक जो थी वो जिनसे ये हारी फाइनली, वेरोनिका जो कि क्वालिफाइंग के नंबर 1 शूटर थी, वेरोनिका ने लास्ट के 2 शॉट इनसे अच्छे मारे और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। लेकिन हाँ, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस अगर हम देखें कि लक्ष्य सेन का आपने नाम लिया
जी,
उनके पास जीतने की एक अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने मिस किया था, क्योंकि उनको एक पॉइंट के बाद तो लग ही नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए क्या करना चाहिए, शायद वो भूल गए, ऐसा भी हुआ है। लेकिन हाँ, कमाल का परफॉर्मेंस था उनका, क्योंकि जिसकी वरीयता पूरे देश पूरे विश्व में 22वें नंबर पे हो और वो टॉप 4 में आके फिनिश करे, तो यकीनन उनकी परफॉर्मेंस को आप उसमें खामियां नहीं निकाल सकते, वो परफॉर्मेंस बेहद अच्छी परफॉर्मेंस।
बिल्कुल, और हॉकी की भी बात करना चाहेंगे जिस तरह से भारत का प्रदर्शन, और अब तक ओलंपिक में अगर हम देखें तो 13 पदक भारत ने कुल जीते हैं जिनमें 8 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। और हॉकी को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट
है। देखिए हॉकी को हम जैसे इस कंट्री में हम लोग क्रिकेट को एक खेल नहीं मानते, कुछ और मानते हैं, उसी तरह बाकी खेलों में अगर हम हॉकी लें तो हॉकी को हम दिल से महसूस करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है इसके साथ, जनरेशन्स में लोगों ने हॉकी देखी है, हमने इंडिया को जीतते हुए देखा है, तो इसलिए एक ब्रॉन्ज मेडल भी किसी गोल्ड से कम नहीं होता।
और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि आईसीसी ने जुलाई 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के गस एटिंगसन को मेंस कैटेगरी में और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को वुमेन्स कैटेगरी में इस सम्मान से नवाजा गया। और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, और राकेश आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को, राकेश आप भी धन्यवाद दे दीजिए हमारे,
बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, शिवरात्रि।